नमस्कार भारत, 19 सितंबर दिन शनिवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। जापान की संसद का ऐतिहासिक फैसला, अब जरूरत पड़ने पर किसी अन्य देश में जाकर लड़ सकेगी जापानी सेना। बिहार में राहुल गांधी करेंगे आज रैली, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव रहेंगे नदारद। बिहार विधानसभा चुनाव में लाखों मतदाता पहली बार डालेंगे वोट, क्या मुद्दे अहम रहेंगे इन युवा मतदाताओं के सामने?
करप्शन है वो हमारे जो पॉलिटिशियन है उनके रग में ब्लड की तरह दौड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि अभी जो हमारा MLA हो वो सबसे पहले लिटरेट हो।
सुनवाएंगे फिल्म समीक्षा और लेकर आएंगे सप्ताह भर के खेलों की हलचल भी, लेकिन पहले सुनिए BBC समाचार।
BBC समाचार, संदीप सोनी से। जापान की संसद ने उस विवादित कानून को मंजूरी दे दी है जिसमें देश में सशस्त्र बलों को विदेशों में जाकर लड़ने की अनुमति दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब जापान के सैनिकों को देश से बाहर लड़ने की इजाजत मिली है। राजधानी टोक्यो में मौजूद BBC संवाददाता का कहना है कि जापान की इस पहल पर उन देशों की पैनी नजर रहेगी जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों से जूझना पड़ा था। यूरोपीय देश क्रोएशिया ने प्रवासियों और शरणार्थियों को जगह देने की अपनी नीति बदल दी है। क्रोएशिया ने अपनी सीमा पर जुटे प्रवासियों को रजिस्टर किए बिना उन्हें बस और ट्रेन के जरिए हंगरी भेजना शुरू कर दिया है। हंगरी ने इसे यूरोपीय संघ के कानून का उल्लंघन बताया है। स्लोवेनिया भी इसी वजह से क्रोएशिया से नाराज है। खबरें मिल रही हैं कि क्रोएशिया से लगने वाली अपनी सीमा पर हंगरी अब बाड़ लगा रहा है और प्रवासियों की नई खेप को ऑस्ट्रिया रवाना कर रहा है। अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्रियों ने सीरिया के संघर्ष पर चर्चा की है। खास बात यह है कि सीरिया के मुद्दे पर दोनों देशों ने एक साल से भी अधिक समय के बाद बात की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने संवाददाताओं से कहा, संघर्ष खत्म करने के लिए संवाद में हमारा भरोसा है। संघर्ष को खत्म करने के लिए राजनीतिक समाधान की जरूरत है। हम रूस की इस बात से सहमत नहीं हैं कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ राष्ट्रपति असद भरोसेमंद साझेदार हो सकते हैं, फिर भी हमें बातचीत करने की जरूरत है। अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सीरिया से खबरें मिल रही हैं कि सरकार के जंगी विमानों ने पलमायरा में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों पर भीषण बमबारी की है। कुछ खबरों में कहा गया है कि इन हमलों में कम से कम 26 लोग मारे गए हैं। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी पलमायरा में ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन इमारतों को पहले ही नष्ट कर चुके हैं। वेनेजुएला की सरकार ने कहा है कि सेना का एक जेट विमान कोलंबिया की सीमा पर उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया जब वो एक अनजान विमान का पीछा कर रहा था। दुर्घटना में जेट विमान के दोनों पायलट मारे गए हैं। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेडिनो लोपेज का कहना है कि जिस इलाके में जेट विमान दुर्घटना हुई वो इलाका मादक पदार्थों के तस्करों के लिए जाना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एरिक फैनिंग को सैन्य मामलों का मंत्री नामित किया है। एरिक फैनिंग अमेरिकी सेना की किसी शाखा में ऐसे पहले असैन्य अधिकारी होंगे जिन्होंने खुद को समलैंगिक घोषित कर रखा है। हालांकि नियुक्ति के लिए एरिक के नाम पर अभी अमेरिकी सीनेट की मोहर लगना बाकी है। BBC समाचार।
तारीख 19 सितंबर दिन शनिवार। नमस्कार भारत, में अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। जापान की संसद ने अपनी सेना को विदेशों में जाकर लड़ने की मंजूरी देने वाले विवादित कानून को पारित कर दिया है। हालांकि कई घंटों तक इसमें देरी हुई क्योंकि विपक्ष ने इस कानून को लागू होने से रोकने की कोशिश की। 70 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब जापान के सैनिकों को देश से बाहर लड़ने की अनुमति मिली है। BBC संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए संदीप सोनी से।
जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने विवादित कानून के संबंध में तर्क दिया कि देश का संविधान अपने सैनिकों को क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरों से निपटने की मंजूरी नहीं देता है, इसलिए संविधान में संशोधन किया जाना जरूरी था। इस विवादित कानून की आलोचना करने वालों का कहना है कि इसकी वजह से जापान गैर जरूरी युद्धों में उलझ सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री शिंजो आबे का कहना है कि इस कानून से जापान के लोगों का शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। शिंजो आबे कह रहे थे कि शांति और सुरक्षा से जुड़े इस तरह के कानून जरूरी हैं ताकि लोगों को युद्ध से बचाया जा सके और वो शांति से रह सकें। मेरा मानना है कि हमने अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के लिए शांति का बुनियादी कानूनी ढांचा तैयार कर दिया है। जापान की सरकार का ये भी कहना है कि देश की रक्षा नीति में बदलाव करना इसलिए भी जरूरी है ताकि उभरते चीन की सैन्य चुनौती से निपटा जा सके। जापान टाइम्स का कहना है कि इस कानून को पारित कराने के लिए संसद में 200 घंटे से भी अधिक समय तक बहस चली और सरकार शुक्रवार को ही इस कानून को पारित कर देना चाहती थी क्योंकि शनिवार से 5 दिन की छुट्टी शुरू हो रही है। संसद में विपक्ष के विरोध की वजह से कानून पारित होने में विलंब हुआ और इस दौरान संसद के बाहर भी इसके विरोध में प्रदर्शन होते रहे। इस कानून के पारित होने के बाद जापान अपने ऊपर या अपने किसी करीबी सहयोगी पर हमला होने की स्थिति में अपनी सेना को लड़ने के लिए देश से बाहर भेज सकता है। इसके अलावा जब किसी बाहरी हमले से निपटने के लिए कोई और समुचित साधन उपलब्ध ना हो तब देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जापान अपने सैनिकों को विदेशी जमीन पर उतार सकता है। हालांकि इसमें ये भी कहा गया है कि ऐसी सूरत में बल प्रयोग कम से कम किया जाएगा।
तो जापान की संसद ने किया ऐतिहासिक फैसला। और अब रुख करते हैं भारत की ओर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 3 युवक पिछले 6 दिनों से एक गहरे टनल में फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम ने वहां पहुंचकर उन्हें निकालने का अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। इस बीच फंसे हुए लोगों से संपर्क हो गया है और उन तक खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई गई हैं। मैंने अब से कुछ देर पहले अश्विनी शर्मा से फोन पर बात करके ताज़ा जानकारी ली।
देखिए, जो आपको जानकारी होगी कि एक निर्माणाधीन सुरंग बनाई जा रही है बिलासपुर के पास, जिसमें पिछले शनिवार को 3 मजदूर उसमें फंस गए थे क्योंकि टनल का एक हिस्सा गिर गया था। और उसके बाद जब से प्रयास किए जा रहे हैं, 2 दिन पहले उनसे एक टनल के ऊपर से एक सुराख करके संपर्क कायम किया गया था और उसके बाद एक ड्रिलिंग मशीन लाके वहां से एक नई छोटी सुरंग बनाई जा रही थी ताकि एनडीआरएफ के जवान नीचे जाके उनको निकाले बाहर। लेकिन कल ये हुआ कि जब तक उम्मीद बन चुकी थी कि रात को या आज सुबह ऑपरेशन किया जाएगा, उनको बाहर निकाला जाएगा, वो जो ड्रिलिंग मशीन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है और अब जब तक ड्रिलिंग मशीन ठीक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, दोबारा से ऑपरेशन शुरू करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है।
अश्विनी, ये बताइए कि तब तक उन तक खाना पानी पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है?
देखिए, 3 मजदूर फंसे थे जिसमें से 2 से राबता काम हो चुका है। एक छोटा कैमरा नीचे डाला गया है जिनसे उनसे बात करी गई है। उसके बाद उनको पानी, ORS का घोल और कुछ ड्राई फ्रूट्स, मेवे भेजे गए हैं, खाने की सामग्री भेजी गई है और उनसे लगातार बातचीत की जा रही है।
वहाँ माहौल कैसा है? क्या मजदूरों में गुस्सा है, जो उनके साथी हैं, उनके परिजन हैं?
देखिए, जब तक उनसे संपर्क कायम नहीं हो चुका था तब तक परिवारजन बहुत गुस्से में थे कि हो सकता है कि जो कंपनी काम करे उनकी कोई लापरवाही हो। और उसके बाद जब से उनसे कुछ संपर्क हो चुका है और उसके बाद कुछ इनको हौसला दिया जा रहा है, तब से उनकी उम्मीद बनी हुई है।
और अब चर्चा बिहार चुनाव की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार के सिलसिले में बिहार में हैं। पश्चिमी चंपारण के रामनगर से वे अपनी पार्टी की चुनावी रैली शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस रैली से महागठबंधन के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अलग रहेंगे। चलिए सीधे चलते हैं पश्चिमी चंपारण के रामनगर, जहाँ मनीष शंडिले मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कैसा है माहौल वहाँ का?
पंकज, अभी मैं रामनगर के हरी नगर चीनी मिल के मैदान में हूँ, जिसे कि हजारी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ अभी तैयारियां सुबह की शुरू हो गई हैं, कुर्सियां बिछाने का काम चल रहा है, बड़ा सा पंडाल बनाया गया है। वाटर प्रूफ तो नहीं है, लेकिन अगर धूप तिखी रही तो जो समर्थक और कार्यकर्ता आएंगे कांग्रेस के या महागठबंधन के, उनके लिए थोड़ी राहत की बात रहेगी। तो यहाँ अभी तैयारियां चल रही हैं हजारी मैदान में।
मनीष, ये बताइए कि क्या वहाँ कुछ लोगों से आपकी बात हो पाई है?
जी, थोड़े लोगों से बातचीत हो पाई। जो अभी दो रैलियां हुई हैं, बड़ी रैली, एक तो अगर एनडीए की बात करें तो चार बड़ी परिवर्तन रैलियां हुई, उसके बाद वहाँ महागठबंधन जिसमें कांग्रेस भी शामिल है उसका पटना में हुआ था, तो उसके मुकाबले लोगों की सहभागिता अभी थोड़ी कम दिख रही है। उसकी अलग अलग वजह हैं, एक तो ये कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है, दूसरा कि ये थोड़े छोटे इलाके में हो रहा है बनिस्पत पटना या मुजफ्फरपुर या भागलपुर के मुकाबले। तो लोग धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, वो राहुल को सुनना चाहते हैं और वो क्या चुनावी मंत्र देते हैं अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों को, जो कि अब दो महीने से भी कम में पूरे नतीजे आ जाएंगे। एक महीने 12 अक्टूबर को पहला मतदान है और ये इलाका कांग्रेस की पकड़ रही है इस इलाके में, इसके बावजूद कि पिछले 25 सालों में बहुत ही कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, 90 में वो सत्ता से बेदखल हुई थी और अभी बस 5 उसके विधायक हैं, तो लोग सुनना चाहते हैं।
जी मनीष, आखिरी सवाल आपसे, ये बताइए कि इस रैली से नीतीश कुमार और लालू यादव दूर हैं क्या? इस बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या कोई अटकलबाजी तो नहीं हो रही है इस रैली को लेकर?
जी हाँ, ये जो पूरा एक माहौल चला, अगर ये बात होती कि भाई सिर्फ राहुल ही संबोधित करेंगे और नहीं आएंगे, लेकिन जो एक पूरा इस दौरान बातचीत चली कांग्रेस राजद और जदयू की ओर से कि जाएंगे नहीं जाएंगे, तो लोगों में एक संशय है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं आ रहे हैं।
जी साथ में जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय की कमी है, अगले कार्यक्रम में फिर से एक बार आपके पास आएंगे। राहुल गांधी बिहार के चुनाव में पहली सभा कर रहे हैं इस बार, लेकिन महागठबंधन के, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, दोनों नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कोई भी उनकी सभा में मंच पर नहीं होगा। क्या वजह है कि इन दोनों नेताओं ने राहुल की सभा से किनारा कर लिया है? यही सवाल पूछा हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने पटना में वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद से।
वजह तो बेहतर यही लोग बताएंगे, लेकिन ये तो है, राहुल गांधी कोल्ड शोल्डर किया थोड़ा सा, पहले लालू यादव ने और फिर बाद में नीतीश कुमार ने भी। अपेरेंटली तो ये दो वजह बता रहे हैं कि हम अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बिजी है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग उस जगह पर, खास के नीतीश कुमार का जो फैसला आया तो ज्यादा चौंकाने वाला हुआ कि वो नहीं जाएंगे और जदयू को कोई और लीडर जाएंगे। इसलिए कि लालू यादव के बारे में कहा यह गया, जब दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये न्यूज आई कि लालू यादव शेयर करेंगे, तो फौरन डिनायल आया दिल्ली से और अखबार में, ये टीवी चैनल में लोकल की, नहीं नहीं राहुल गांधी नाराज रहते हैं लालू प्रसाद से। और फिर बात चली कि 2 साल पहले ऑर्डिनेंस जो था के बारे में बोला था राहुल गांधी ने, उसके बाद लालू यादव का कन्विक्शन हो गया, तो कहा गया कि भाई लालू यादव को राहुल गांधी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा लगा कि लालू यादव खुद ये बात को जवाब में ये कहना चाहते हैं कि हमारी भी हैसियत है, तो अपने बेटे को तेजस्वी को उसने ऑफर किया कि ये जाएंगे स्टेज पर, तो ये तो हुआ कि उसको मैंने टू शो हिम हिज प्लेस।
कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है लालू यादव की छवि के साथ नहीं अपने को जोड़ना चाहते थे, इसलिए भी उन लोगों ने काफी इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी।
नहीं, ये बात तो देखिए उस दिन लालू यादव ने कहा कि, बल्कि उसने कहा कि देखिए अभी तो राहुल गांधी का फोन आया। दूसरी बात यह है कि खुद स्टेट कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, अशोक चौधरी, वो तो इन्विटेशन लेके गए और बहुत रिक्वेस्ट करते रहे कि राहुल गांधी का इन्विटेशन है लालू प्रसाद के पास, और हमको प्रेस ने बयान दिया 2-2 बार कि हमें पूरी उम्मीद है कि लालू यादव आएंगे, लालू यादव आएंगे। अब ये बातें जो मीडिया में लग रही है ये पुरानी हो गई, अब लालू यादव मैंने कांग्रेस पार्टी भी अपनी समझ गई, राहुल गांधी भी समझ गए।
ये सब जो कुछ हो रहा है बहुत बड़ा शायद नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा कि शायद जो महागठबंधन है उस ये एक मजबूरी का साथ है और बहुत ज्यादा लोग उत्साह में नहीं है?
नहीं देखिए, दो चीज है, ये तो लालू यादव ने क्लियरिफाई कर दिया और नीतीश भी नॉट सो मेनी वर्ड्स क्लियरिफाई कर दिया कि हम कैंपेन करेंगे और कैंपेन में जो रहेंगे लीडर सबके साथ घूमेंगे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जो भी हो। लेकिन वो एक बार ये अपना ये शो जरूर करना चाह रहे थे ये दोनों लीडर्स, लालू और नीतीश। अब ये आपका सवाल ये है अपने जगह पर कि वो कितना हद तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, गठबंधन छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी बातें में ये कहना ये लोग जरूर चाह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को हम लोगों ने इतना स्पेस दिया, 40 सीट डिजर्व नहीं करती थी, 40 दिया। उसके बाद सब कुछ युवा कांग्रेस का एक बड़ा सेक्शन जो है, या जो भी छोटा या बड़ा जो भी सेक्शन, वो हमेशा रन डाउन करता रहा, ये इस तरह की बात करता है कि लालू को पसंद नहीं करते हैं, लालू को पसंद नहीं करते हैं। ये बातें बहुत ही अप्रिशिएट नहीं की जा रही थी।
बिहार विधानसभा में इस बार तकरीबन 24 लाख नए वोटर हैं। ये नए वोटर आखिर क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पर ये वोट डालेंगे, ये एक अहम सवाल है। पटना में सीटू तिवारी ने कुछ ऐसे ही नए मतदाताओं से बातचीत की।
मैं इस वक्त तो पटना के काजीपुर इलाके में, बता दें कि इलाका जो है वो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग यहाँ पर है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोचिंग का जाल यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर युवाओं की आमद जो है वो हमेशा लगी रहती है। रात 9 बजे आप देखिए, सुबह देखिए, यहाँ पर युवा जो है आते रहते हैं। ऐसे में मेरे साथ अभी कुछ युवा वोटर्स हैं या फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे। बता दें कि इस बार बिहार के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें 24 लाख वोटर जो हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी वो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आखिर किन मुद्दों के साथ वो इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे या इसमें अपनी हिस्सेदारी करेंगे?
देखिए, इस बार फर्स्ट टाइम हम वोट देंगे और उसका अनुभव लेने के लिए हम तैयार हैं। ऐसी गवर्नमेंट हम चुनने का काम करेंगे जो युवाओं को शिक्षा और समान शिक्षा के लिए काम करे और साथ ही युवाओं को रोजगार की बात करे।
मैं अभी पहली बार वोट कर रही है तो मेरे में एक अजीब सा एक्साइटमेंट है कि पहली बार वोट करूंगी तो हमारा जो MLA है वो कैसा होगा, या फिर हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते आती हूँ ये हमारे पास अभी इशू हैं, कोई करप्ट है। आज जो करप्शन है वो हमारे जो पॉलिटिशियन है उनके रग में ब्लड की तरह दौड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि अभी जो हमारा MLA हो वो सबसे पहले लिटरेट हो, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा गवर्नमेंट ऐसा हो या फिर हमारा MLA ऐसा हो जो हमारी यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर और हमारे जो इशू हैं कॉलेज स्कूल में छेड़छाड़ होना, तो इन तरह के मुद्दे को वो विधानसभा में उठाए और हमारी तरह एक नई पॉलिसी बने।
मैं पहली बार वोट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इस मुद्दे पर वोट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे कैंडिडेट हो वो प्रॉपर इलेक्टेड होने के बाद अपने क्षेत्र का भ्रमण करे और वहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने का विधानसभा में अपने मुद्दे उठाए।
सबसे पहले तो एक एक्साइटमेंट है कि पहली बार हम लोग वोट करने जा रहे हैं एज एजुकेटेड पर्सन और वोटर्स। दूसरी बात ये होगा कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत बदहाल है, उस स्थिति में सुधार हो। जो पैरेलल सिस्टम एजुकेशन का यहाँ चल रहा है, एक गवर्नमेंट स्कूल्स और एक प्राइवेट स्कूल्स का, इस दूरी को मतलब पाटा जाए। दूसरा जो हमारे दिमाग में ये होगा वो क्लीन छवि का कैंडिडेट हो, उसे हम वोट करें।
देखिए, सबसे पहले हम युवा हैं, इस बार जो वोट करने के लिए जा रहे हैं तो सामाजिक जो अभी चल रहा है स्थिति, शिक्षा पे का जो सुधार करेगा, जो हमारे पास एजेंडा दिखलाएगा भविष्य का कि युवाओं के प्रति हम इतना रोज़गार लाएंगे और युवाओं महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करेंगे, हम लोग उनको वोट करेंगे।
हम पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट देंगे और पहला बार हम लोकतंत्र, इतने बड़े देश के लोकतंत्र का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम वोट देंगे शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, सुशासन की जो बात करता है, जो सही में शिक्षा देने की बात करता है, समान शिक्षा देने की बात करता है।
बहरहाल ये सभी खुश हैं क्योंकि ये लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में अब की बार या जो नई सरकार बिहार की बनेगी उसमें एक अपनी भागीदारी, अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने जा रहे हैं। सीटू तिवारी, BBC पटना।
और अब समय है फिल्म समीक्षा का। इमरान खान और कंगना रनौत की फिल्म कट्टी बट्टी में कितना है दम, सुनिए फिल्म समीक्षक नम्रता जोशी से। पेश कर रहे हैं BBC संवाददाता वैभव दीवान।
बाप बनने के बाद एक इंसान पर कितना प्रेशर होता है, इसका सीधा एग्जाम्पल है इमरान खान। गंदे बदबूदार डायपर्स भरी जिंदगी में थकना मना है, पर फिर उन्होंने लिया एक ब्रेक और फिल्म की कट्टी बट्टी। BBC फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी ने फिल्म पूरी देखी और इनकी क्या राय है कट्टी बट्टी के बारे में?
बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और वैभव तुम भी जानते हो क्यों। आई थिंक इतनी ज़्यादा अझेल उबाऊ फिल्म जिसमें कि इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं नाम के वास्ते, मेरे ख्याल से रिसेंटली कभी देखने को नहीं मिली। इंटरवल के टाइम पे मैंने कभी नहीं देखा कि एक साथ सब लोगों ने एक दूसरे को देख के सर पे खुजाते हुए कहो कि हम ये क्या देख रहे थे, ये था क्या जो हमने देखा। अब फिल्म में कुछ भी नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता है। अगर आप शुरू में देखो तो आधा पौना घंटा तो फिल्म क्या चल रही है, क्यों चल रही है, क्या दिखा रहे हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है इस फिल्म के बारे में। कहने को दो लवर्स की एक स्टोरी है, इमरान है और कंगना है, और कंगना जो कमिटमेंट एक तरह से फोबिक हैं, इमरान जो शादी करना चाहते हैं, और उनके बीच में आगे पीछे समय में चलती जाती है फिल्म, कभी बैक एंड फोर्थ इन टाइम जो कहते हैं ना हम, सीन टू सीन जंप होता है, सारे सीन्स डिसजॉइंटेड डिसकनेक्टेड लगते हैं। इतना ज़्यादा मेस ऑफ अ स्ट्रक्चर जो कहते हैं ना फिल्म का, मैंने शायद रिसेंटली कहीं नहीं देखा है।
इमरान खान का करियर इस फिल्म के बाद जैसा जा रहा था वहीं जा रहा है, वुड ही बी अ वेरी गुड हाउस हस्बैंड नाउ?
हाउस हस्बैंड की बात छोड़ो, मुझे लगता है जो आमिर शायद रो रहे थे, तौलिया लेके आंसू पोछ रहे थे, वो ये होगा कि बेटा अब भांजे से कि अब क्या एक्सपेक्टेशंस रखो, इसके बाद तो मतलब यू रियली नीड टू पुल ऑफ अ मिरेकल जो कहते हैं।
और कंगना के बारे में, कंगना को क्या लगेगा इस फिल्म से?
कंगना के साथ ये है ना कि कंगना अपने में एक इंटरेस्टिंग एक्टर हैं, और वो लेकिन इस फिल्म, ये फिल्म तो साथ दे आपका, ये फिल्म ना वही उनका जो एक वो स्लाइटली खिसकेली कैरेक्टर हमेशा बनती है, ये इसमें उसी को प्ले आउट करा जा रहा है, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा। मतलब कंगना अकेले कितना लेके चलेंगी फिल्म को साथ ना?
खैर, जनता की क्या है राय, कट्टी बट्टी को मिलेगी क्लैप्स या स्लैप? जनता,
फिल्म इज वेरी गुड फिल्म, इमरान खान की एक्टिंग बहुत अच्छा है, फिल्म तो गुड चलेगी, पक्का चलेगी, फिल्म अच्छी है, हिट फिल्म।
इट्स अ नाइस मूवी, इट्स लाइक इन कट्टी बट्टी, इट्स नॉट इन फुल ओवर एंटरटेनमेंट लाइक।
स्टोरी भी अच्छी थी, मींस इट वाज ओके। 3.5।
फिल्म समीक्षा के बाद आप समीक्षा अखबारों की संदीप सोनी के साथ।
पंकज जी, आप देख सकते हैं अखबार जो आए हैं, बंडल थोड़ा गीला है जो बता रहा है दिल्ली में बारिश हुई है बहुत दिनों के बाद। पहला अखबार इंडियन एक्सप्रेस, अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपी है कि एक गुजराती फिल्म के बारे में ये खबर है जिसका ताना बाना समलैंगिकता के इर्द गिर्द बुना गया है। खबर में लिखा है कि इस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि हो सकता है कि समाज का एक हिस्सा जो है वो समलैंगिकता को सामाजिक बुराई मानता हो। इस पर फिल्म के निदेशक के आर देवमणि को लगता है कि फिल्म को मार दिया गया है। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर। अगला अखबार हिंदुस्तान, जहां मोटे मोटे काले अक्षरों में सुर्खी लगी है, नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे, और इस शीर्षक के पीछे विस्मय बोधक चिन्ह लगा है, क्योंकि अब तक यही कहा सुना और लिखा पढ़ा जाता रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र की मौत विमान हादसे में
ही उनका निधन हुआ था, लेकिन
अब पश्चिम बंगाल सरकार ने 12,744 पन्नों की 64 फाइलें जग जाहिर की हैं जो नेताजी से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आम लोग सोमवार से देख सकेंगे।
और इस फैसले के बाद संदीप केंद्र सरकार पे भी दबाव है कि उनके पास जितने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं
और तमाम आरटीआईज हैं जिनका जवाब उन्हें देना होगा। अब दैनिक भास्कर में भी ये खबर है और सुर्खी है कि 70 साल बाद 64 फाइलें सामने आईं, लेकिन नेताजी की मौत अब भी रहस्य बनी हुई है। तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबर है। और नवभारत टाइम्स देखें तो यहाँ पहली खबर का शीर्षक है फिर ठन गई। लिखा है कि उपराज्यपाल नजीब जंग के कार्यालय ने दिल्ली सरकार के तहत काम कर रहे अधिकारियों को मेमो भेजा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो आदेश देती है वो कथित असंवैधानिक आदेश हैं, उनको ना माने। इस पर केजरीवाल सरकार ने कहा है कि झगड़ा छोड़कर डेंगू से निपटे, क्योंकि दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की संख्या 27 हो गई है
का बयान आ रहा था उनका।
और कल नरेंद्र मोदी बनारस गए थे, वहाँ उन्होंने रिक्शे बांटे। इस खबर पर जनसत्ता ने एक कार्टून छापा है जिसमें नरेंद्र मोदी रिक्शा चलाते नजर आ रहे हैं। रिक्शा में साइकिल तो होती है, और उस रिक्शे के पीछे शायद मुलायम सिंह है या अखिलेश यादव जैसा एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो साइकिल लिए खड़ा है। साइकिल छिनती हुई नजर आ रही है ऐसा लगता है। और अमर उजाला ने अपने पहले पन्ने पर खबर दी है कि बीकानेर जमीन सौदे में वाड्रा पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक नया मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। ये खबर भी तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर है।
बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। और अब सप्ताह भर के खेल जगत की हलचल आपके लिए समेट कर लाए हैं आदेश कुमार गुप्त।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत टेनिस से।
Without the support, it's kind of impossible to win against such players. You know, it's my first top 50 win in a long time. So, you know, thank everybody for coming out. Thank my team. I mean, they're the reason that, you know, I'm able to perform like this. And, you know, we're just level right now.
कल दिल्ली के आरके खन्ना टेनिस स्टेडियम में भारत के सोमदेव देव वर्मन ने शानदार खेल दिखाते हुए चेक गणराज्य के जिरी वेस्ली को 3 सेट में सीधे 7-6, 6-4, 6-3 से मात दी और इसके साथ ही डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ में भारत की उम्मीदों को भी जिंदा रखा। और जैसा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना कि सोमदेव देव वर्मन ने इसका पूरा श्रेय मैदान में मौजूद भारत के समर्थकों को दिया। इससे पहले खेले गए पहले एकल मुकाबले में 85वीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य के लुकास रसोल ने 125वीं वरीयता हासिल भारत के युकी भांबरी को 6-2, 6-1, 7-5 से हराया। अब आज युगल मुकाबले में भारत के सदाबहार खिलाड़ी लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना अपना दमखम दिखाएंगे। उनका सामना चेक गणराज्य के बेहद अनुभवी राडेक स्टेपनेक और उनके जोड़ीदार एडम पावलासेक से होगा। आज के मुकाबले को लेकर भारत के पूर्व डेविस कप कोच अख्तर अली कहते हैं,
देखिए 60-40 में चांस देता हूं, भारत को 60 और चेकोस्लोवाकिया 40। ये लोग को मैच निकालना होगा और हम कॉन्फिडेंस है कि ये दोनों मैच निकाल सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि डेविस कप में अगर 2-1 आप लीड कर रहे हैं तो अपोजिशन को बहुत प्रेशर रहता है और हमें उम्मीद है भारत के प्लेयर जो है लिएंडर पेस और बोपन्ना दोनों अभी US ओपन खेल के आ रहे हैं और शार्प भी हैं जिसको कहा जाता है, तो बहुत अच्छा मैच होगा।
और अब बात बैडमिंटन की। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अजय जयराम के रूप में भारत की चुनौती अभी भी बची हुई है। अजय जयराम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में अजय जयराम ने कल जापान के शो सासाकी को 21-19, 16-21, 21-16 से बात दी। आज सेमीफाइनल में उनका सामना 7वीं वरीयता हासिल चीन ताइपे के चोउ तिएन चेन से होगा। और अब बात क्रिकेट की। इन दिनों बांग्लादेश ए क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर है और उसने बेंगलोर में खेले गए दूसरे अनधिकृत एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कल भारत ए को 65 रन से करारी मात दी। भारत के सामने जीत के लिए 253 रनों का लक्ष्य था लेकिन उसकी पूरी टीम 42.2 ओवर में 187 रन ही बना सकी। उधर निशानेबाजी में भारत के अनुभवी स्कीट निशानेबाज महराज अहमद खान ने इटली में आयोजित ISSF शॉटगन विश्व चैंपियनशिप के माध्यम से रियो ओलंपिक खेलों का कोटा हासिल किया। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
खेल और खिलाड़ी आपके लिए लेकर आए थे आदेश कुमार गुप्त। और कार्यक्रम के अंत में अब समय है प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। जापान की संसद ने उस विवादित कानून को मंजूरी दे दी है जिसमें देश के सशस्त्र बलों को विदेशों में जाकर लड़ने की अनुमति दी गई है। क्रोएशिया ने अपनी सीमा पर जुटे प्रवासियों को रजिस्टर किए बिना उन्हें बस और ट्रेन के जरिए हंगरी भेजना शुरू कर दिया है। हंगरी ने इसे यूरोपीय संघ के कानूनों का उल्लंघन बताया है। सीरिया से खबरें मिल रही हैं कि सरकार के जंगी विमानों ने पलमायरा में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों पर भीषण बमबारी की है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने एक साक्षात्कार में कहा है कि तेहरान में अमरीका मुर्दाबाद के नारों का मतलब ये नहीं कि वे अमरीकी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वेनेजुएला की सरकार ने कहा है कि सेना का एक जेट विमान कोलंबिया की सीमा पर उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया जब वो एक अनजान विमान का पीछा कर रहा था। दुर्घटना में जेट विमान के दोनों पायलट मारे गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एरिक फैनिंग को सैन्य मामलों का मंत्री नामित किया है। एरिक फैनिंग अमरीकी सेना की किसी शाखा में ऐसे पहले असैन्य अधिकारी होंगे जिन्होंने खुद को समलैंगिक घोषित कर रखा है। हालांकि एरिक की नियुक्ति पर अभी अमरीकी सीनेट की मोहर लगना बाकी है। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं खत्म होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, पंकज प्रियदर्शी और संदीप सोनी को अनुमति दीजिए 8 बजे विश्व भारती में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।